हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के छठे श्लोक को देख रहे हैं। और आप जानते हो अभी ये सुखदेव गोस्वामी के संबंध में प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी जी किस प्रकार भागवत को बोले, उनको तो बोलना नहीं चाहिए था। और हमने भी तो चर्चा सुना था कि वह तो निर्विकल्प थे, मतलब इस जगत में भगवान के अलावा कुछ देखते ही नहीं थे। उदाहरण दिया जा रहा था कि स्त्रियां स्नान कर रही थी और वह नग्न जा रहे थे, फिर भी उन्होंने देखा भी स्त्रियों को, लेकिन स्त्रियों ने समझ लिया कि इनमें कोई काम वासना नहीं है और इस कारण से उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका था। लेकिन व्यासदेव जब गए तो उन्हें शरीर को ढक दिया था। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यासदेव में काम वासना है, लेकिन वह भेदभाव कर रहे थे, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखा रहे थे। अब आगे उनके गुणों को विचार कर रहे हैं। वो ट्यूबलाइट को ऑन कर सकते, लाइट ऑन, अंधेरा सा लग रहा है, लाइट ऑन है उधर? ओ अच्छा ठीक है, लाइट नहीं है उसके, ठीक है ठीक है। अब वो कह रहे हैं, इस श्लोक में बताएंगे कि उनको लक्षित कैसे किया गया, पहचाना कैसे गया। कोई व्यक्ति अगर प्रवचन अच्छा करे या साधु जैसा वेश धारण करे तो उसको हम पहचान सकते हैं। तो उनसे पूछा भी कैसे गया कि आप श्रीमद् भागवतम बोलिए, ये शौनक जी का प्रश्न है। तो मेरे पीछे बोलिए, कथम आलक्षितः पौरे
कथम आलक्षितः पौरे
संप्राप्तः कुरु जांगलान
संप्राप्तः कुरु जांगलान
उन्मत्त मूक जड़वत
उन्मत्त मूक जड़वत
विचरण गज सहवये
विचरण गज जाहवे।
तो यहाँ पे शब्दों का अर्थ को देखिए, कथम आलक्षितः पौरे, पौरे मतलब पूर्ववासी यानी नागरिकों के द्वारा वह किस प्रकार से आलक्षित हुए, आलक्षित मतलब आइडेंटिफाई हुए, कैसे उनको पहचाना गया, कब की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं संप्राप्तः कुरु जांगलान, कुरु और जांगल प्रदेश, ये देश विशेष के नाम है, इनको पार करके वह हस्तिनापुर आए थे। तो वहां के लोगों ने किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को पहचाना। तो मान लीजिए कोई पूछे कि क्या कठिनाई थी, तो कह रहे हैं उन्मत्त पागल की तरह, मूक मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, और जड़वत मतलब जड़, बिल्कुल जड़ थे, जैसे लग रहा है कि कोई चेतना ही नहीं, एकदम पत्थर की तरह वह घूम रहे थे। विचरण मतलब विचरण कर रहे थे, कहाँ विचरण कर रहे थे, तो है गज जंगल में नहीं, गज साहवे, गज हस्तिनापुर में। अब क्यों हस्तिनापुर कहते हैं, आह्वान सुना है आपने, आह्वान शब्द बोलना, आह्वान, आवये मतलब जिस देश का नाम हाथी के नाम के साथ बोला जाता है, ये गज सहव्य शब्द की व्युत्पत्ति है, इसलिए क्या नाम हुआ हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का एक और अर्थ दिया गया है, श्रील सिद्ध स्वामी बोले हैं कि ये हस्ती नाम के राजा ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ओके। कुरु तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। एक छोटा सा बात, एक भक्त बोल रहे थे कि दिल्ली भी भगवान का धाम है क्योंकि भगवान ने खूब लीला करी है वहां पर, और श्रीमद् भागवतम तो स्थान में बोल ही गई, और उसे आसपास ही कर लीजिए बाल प्रबोधिनी। अब आगे उसी थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि वह निर्विकल्प तो थे ही साथ ही, और वह समाधि से बाहर भी नहीं आते थे, मतलब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि समाधि तो लगी हुई थी और ऐसा नहीं था कि किसी घटना से उनकी समाधि टूट रही थी, समाधि से बाहर ही नहीं आते थे, अपितु कीट के समान पृथ्वी पर पर्यटन करते थे। कीट के समान समझ रहे हैं क्या, वो तो समझ रहा हूँ कीड़े, लेकिन कीड़े से तो तुलना की रही है, कीड़े से तुलना इस तरह के अर्थ में कि आपने देखा हो कीड़े इधर उधर कहीं निरुद्देश्य घूमते हैं, कोई इसका प्रयोजन नहीं होता, कोई इधर भागते हैं कोई उधर भागते हैं, कोई कोई कुछ कह भी नहीं सकते कि कहाँ जाएगा कीड़ा, इसलिए बोल रहे हैं कि कीट के समान पृथ्वी पर पर्यटन करते थे। इस वाक से यह सूचित होता है कि वे परिव्राजक के धर्म का निर्वाह करने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो वह किस प्रकार दृष्ट व प्रार्थित होकर निर्बंध के साथ कथा कहे, ये बात समझ में आई भाई। वह तो परिव्राजकाचार्य की तरह इधर उधर घूम रहे थे, और जिस प्रकार से उनका वर्णन हुआ उन्मत्त मूक जड़वत, तो कोई उनको देख ही नहीं पाएगा। पहली बात तो ये क्योंकि लगातार वो घूम रहे हैं इसलिए उनको ढूंढना मुश्किल है, ये बात समझ में आया, इसलिए बोल रहे हैं दृष्ट, दृष्ट मतलब देखे ही नहीं जाते, वो दिख ही नहीं रहे थे, दिख नहीं रहे मतलब कभी कुरु में घूम रहे, कभी जंगल में घूम रहे हैं, कभी हस्तिनापुर में आ गए तो पहली बार दिक्कत यह है कि दिखते नहीं थे, और दिखने के बाद उनसे प्रार्थना कैसी की जाए। फिर प्रार्थना तो तब करेंगे भी आइए आप प्रवचन करिए कुछ करिए, जब मालूम हो कि वहां कोई प्रवचन किया है उन्होंने। तो दो कठिनाइयां थी, देखे कैसे गए और उसके बाद अगर दिख भी जाते, मान लीजिए हस्तिनापुर में बोल रहे हैं कि दिख भी रहे तो दिख कैसे रहे हैं पागल की तरह, तो उनसे कौन प्रार्थना करने वाला है भागवत क्लास देने के लिए। और साथ साथ क्योंकि वे परिव्राजक का धर्म लिए हुए हैं इसलिए एक जगह बैठकर 18,000 श्लोक क्यों बोल दिए, कैसे बोले उन्होंने, बहुत अच्छा एक एक शब्द बड़ा उन्होंने विचार किया है। ठीक है, ये प्रश्न है सब। यह महान तत्वज्ञ है, इस प्रकार के ज्ञापक धर्म का उनमें अभाव था। ये समझ में आई लाइन का मतलब क्या है, भाई ये बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, इस प्रकार का धर्म वह प्रकाशित ही नहीं कर रहे थे। ये समझ में आ रहा, ज्ञापक धर्म का मतलब क्या हुआ, कोई जान ही नहीं सकता था कि ये भागवत को जानने वाले हैं, वो ऐसा धर्म ऐसा ऐसा गुण प्रकाशित ही नहीं कर रहे थे लोगों के सामने। ये बात है, जैसे आप देख सकते हैं जड़ भरत भी इसी प्रकार से श्रीमद भागवतम के परम वेत्ता थे, महाभागवत हैं, लेकिन ऐसा धर्म ऐसा गुण प्रकाशित ही नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति समझ सके कि महान भागवत है। नहीं तो रहुगुण किस प्रकार से उनको अपनी पालकी ढोकने में लगा था, इस प्रकार से लोग करते हैं। और वो कहते भी हैं आप कौन हैं, रहुगुण वहां कहते हैं आपके कपिल देव हैं, फैन को थोड़ा सा कम कर सकेंगे अच्छा रहेगा, कि आप कपिल देव हैं या कोई और महान ऋषि हैं, कौन है जो इस वेशभूषा में इसके मतलब छुपे आवरण में भय प्रस्तुत हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ज्ञान के बिना उनसे प्रार्थना कैसे संभव हुई, मतलब जब वह दर्शा ही नहीं रहे थे कि वो महान भागवत जानने वाले हैं तो कोई उनसे प्रार्थना ही नहीं करेगा, और जब प्रार्थना करेगा ही नहीं तो फिर वह भागवत बोले क्यों, बोलने वाले वैसे भी नहीं थे। इस आशय से यह कथम आदि श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक समझ में आया पूरी तरह से, आपके पास फोन नहीं है पर, अच्छा ठीक है, शायद फोन है आपके पास, आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए तभी समझ में आएगा। आप कौन सा टेक्स्ट देख रहे हो, आप भी लीजिए फोन से लीजिए वह समझ। देखिए मैं जानबूझकर टीका सामने लिखवा के बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो माइंड ऐसे ही कहीं उधर उधर चला जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सामने रहेगा तब आपको समझ में आएगा, उसके अर्थों का आसतन आप कर पाएंगे। कुरु जंगल, जंगल नहीं होना चाहिए जंगल होना चाहिए, कुरु जंगल, कुरु कौमा जंगल, यह सब देश विशेष है, देश विशेष है मतलब देश स्थान के नाम है। तो पहले सुखदेव गोस्वामी इन स्थानों को प्राप्त हुए और फिर हस्तिनापुर आए, ये समझना चाहिए। जिसका नाम गज अर्थात हस्ती के साथ लिया जाए वह देश, अथवा जिसको हस्ती नाम के राजा ने निर्माण कराया हो, ऐसे हस्तिनापुर में वे विचरण कर रहे थे। ये समझ में आया दो शब्द, गज सहावे का समझ में आ रहा है, गज आहवे, गज गज शब्द के साथ उसको पुकारा जाता है तो इसलिए उसको हस्तिनापुर कह रहे हैं। और दूसरा क्या कारण बता रहे हैं, हस्ती नाम के राजा ने उसका स्थापन किया। ऐसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि वहां बहुत सारे हाथी थे तो इसलिए भी हस्तिनापुर कहते थे, अभी ये याद नहीं रहा कहां है लेकिन ऐसा पढ़ा हूं मैं उसको। इंद्रप्रस्थ किसको बहते थे, ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मैं खाली उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो रेलेवेंट है। तो पूर्ववासियों के द्वारा वे किस प्रकार आलक्षित हो पाए, आलक्षित मतलब पहचाने गए। ती अभी बहुत सुंदर है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। तीन प्रकार से किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा ज्ञान संभव हो पाता है, मतलब कैसा ज्ञान कि वह अच्छा व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति, वो तीन प्रकार से होता है। सुंदर स्वरूप से, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, उन्मत्त पागल की तरह घूम रहे हैं। किंचित भाषण से, तो कह रहे हैं मुंह को बोल ही नहीं रहे थे। या सदाचार से, तो कहते हैं जड़वत, जड़वत मतलब पत्थर की तरह एकदम निचेष्ट कहना चाहिए। परंतु वहां तीनों का अभाव ही नहीं अपितु तो उसके विरुद्ध आचरण को श्रील सुखदेव गोस्वामी अंगीकार किए हुए थे। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं था कि ये तीनों गुण नहीं है अपितु तो उसके विरुद्ध गुण प्रस्तुत कर रहे। सुंदर तो नहीं दिख रहे थे, सुंदर तो बहुत थे लेकिन पूरा शरीर धूल दूसरे था, जटा हो गई थी तो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे बाह्य रूप से। तो कह रहे हैं कि ना सिर्फ इन तीनों गुणों का अभाव था, ये समझ में आ रही टीका या कठिन हो रहा है, ना सिर्फ तीनों गुणों का अभाव था अपितु उसके विरुद्ध धर्म प्रस्तुत कर रहे थे, तो कैसे समझेगा व्यक्ति की महान वैष्णव है। ठीक है ना, उन्मत्त मूक जड़वत, समझ में आ गया, उन्मत्त मतलब पागल, मूक मतलब बोल ही नहीं रहे थे तो कोई भाषण का प्रश्न नहीं होता, जड़वत मतलब जड़ की तरह रहते। वस्तुतः वे ऐसे नहीं थे, इसको सूचित करने के लिए वत का उपयोग कर रहे हैं। जड़वत उन्मत्त मूक जड़वत, वत मतलब जैसे थे, पागल जैसे दिख रहे थे, मूक जैसे थे और जड़वत जड़वत जड़ जैसे थे। इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जड़ थे, इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि वो पागल थे या फिर वह मूक या बोलने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि इससे पहले हमने सुना था ऋषि अर्थात जो यथार्थ भाषण कर सके, जैसा अर्थ है वैसा अर्थ प्रस्तुत कर सके। और फिर आप देखेंगे 18,000 श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। वत शब्द समझ में आ रहा है, उपमा दी जा रही है कि हाँ ये ऐसे थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह गुण उनमें था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, प्रस्तुत कर रहे थे इस प्रकार से। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। तो जिन चीजों की व्याख्या हम कर चुके हैं उसको हम कुछ नहीं चर्चा करेंगे। अपना पितृग्रह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि हम साधुओं को देख करके नहीं समझ सकते, साधुओं को कान से सुना जाता है। आज महाराज श्री का व्यास पूजा दिवस है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। उनके एक शिष्य हैं, वो मेरे मित्र हैं, उनका दीक्षा हो गया था। जब उनका दीक्षा हुआ था तब तक वो महाराज का प्रवचन नहीं सुनते थे जो भी है, उनकी दीक्षा करा दी गई थी। तो फिर उनसे मैंने उनको प्रार्थना करी कि आप कृपया महाराज जी के प्रवचन सुनिए। जब वो महाराज के प्रवचन सुनने लगे तब मेरे से वो कहे, अब मुझे लग रहा है कि वो मेरे गुरु महाराज हैं। तो समझ रहे हैं ना, गुरु से संबंध जो है वह कान के द्वारा होता है। एक जगह और अच्छा एक भक्त तो बोल रहे थे, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप। मतलब जब भी गुरु के पास जाए कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। कभी यह प्रश्न नहीं किया जाता, ये औचित्य नहीं, उचित नहीं लगता है, गुरु जी आप ठीक हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको शिल प्रथु महाराज जी कहते हैं, चार कुमारों को समझ, उनकी मति तो भगवान में लगी हुई है, वो तो ठीक ही है, ठीक तो हमको होना है। ये सब सही नहीं होता है। वो प्रथु महाराज कह रहे हैं मैं आपके कल्याण के बारे में क्या पूछूं, आप तो भगवान में आपकी मति लगी हुई, चार कुमारों को कहते हैं, आपको हमारे कल्याण के बारे में क्या सोचूं, आप हमारे कल्याण के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। ऐसे गर्गाचार्य जी के लिए को शिला नंद महाराज ने भी कहा था, ठीक है। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। देखिए मैं गलत बोल रहा था, एकदम प्रभुपाद जी बात को बोल रहे हैं। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कुछ कुछ लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ होता है श्रवण करने के द्वारा। महाराज इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं, कई बार समझाते हैं महाराज श्री की। देखिए सेवा का अर्थ हम बड़ा रूढ़ ले लेते हैं, सेवा मतलब पांव दबाना और क्या कहते हैं खाना खिलाना, ये सब है सेवा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और अर्थ है सेवा का, और उसे कहते हैं जैसे सेवन करना, जैसे हम लोग दवा का सेवन करते हैं, उस प्रकार से साधु संघ का मतलब है साधु संघ में आकर गुरु के मुख से भगवान के बारे में सुनना, साधुओं के से भगवान के बारे में सुनना। बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। ये समझ में आई बात कि सामान्य लोग उनको महान साधु समझे, वैसा उन्हें कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। देखिए इससे मुझे विश्वास रहता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा कंट्रोल्ड है। मैं भी आंखों से देख रहा हूं, मैंने कई बार बोला ना, मैं देख सोच रहा हूं और कुछ बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन सब भगवान के द्वारा होता है। तो अच्छा किया आपने बताया, जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको साधुओं से हमारा संबंध जो है वह श्रवण के द्वारा होता है। वही उनका सबसे बड़ा उपहार है। जो भगवान के प्रति उनका प्रेम है वह उनकी वाणी के द्वारा परिलक्षित होता है, प्रकट होता है। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। ध्यान देना होगा कि देखिए भागवत में आप पढ़ने वाले हैं आगे कि भगवत प्रेम प्राप्त होने से पहले सबसे पहले व्यक्ति के पास दिव्य ज्ञान आता है, फिर सिद्धियां आती हैं और फिर भगवत प्रेम प्राप्त होता है। नारद जी बताते हैं इसको। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी के पास सिद्धि नहीं थी, माँ के गर्भ में 16 साल अपनी इच्छा से रह रहे हैं, ये क्या सिद्धि नहीं है? लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वह जादू दिखाने में रुचि नहीं रखते थे, ये बात बोल रहे हैं। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्त पुरुष थे होना चाहिए। मिट हो गया, ठीक है। कोई यहां तक प्रश्न है इस संबंध में? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैक पे बोलिए। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूत्
समभूतात्
यत्रैषा सात्वती श्रुतिः कथं वा, या फिर कथं वा मतलब किस तरह पांडवेयस्य राजर्षि मुनिना सह इस संवाद समभूत मतलब पांडवेय मतलब कि परीक्षित महाराज और जो कि राजर्षि थे और मुनिना सह मतलब सुखदेव गोस्वामी के बीच में उनके बीच में संवाद समभूत किस प्रकार से संवाद हो पाया ये? हे तात मतलब सुत गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं, जिसके द्वारा यत्र एषा सात्वती श्रुति, जिसके द्वारा ये सात्वती श्रुति ये भागवत संहिता प्रकट हुई, किस प्रकार संभव हो पाई, ये उनका प्रश्न है। ठीक है, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। बाल प्रबोधनी, बहुत एक ही छोटी सी पॉइंट इनका, श्रील सूत गोस्वामी को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तात, तात पे वो इसको बोल रहे हैं, कोई खास अलग व्याख्या नहीं किया। तात्पर्य, श्रीमद भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है, यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। स्रोत और स्तव में क्या अंतर है? स्तव और स्रोत, ठीक है, याद नहीं आ रहा, अंतर होता है कुछ, तो स्पष्ट है, कोई समझाना नहीं इसमें। ना ना ना, वो अलग है। पानी का स्रोत मतलब सात्रो अत्ता, यहाँ स्रोत्र और स्तव कुछ अंतर होता है, अभी याद नहीं आता। चलिए आखिरी श्लोक देखें। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि भागवत बोलने में तो बहुत समय लगा होगा, तो ये कैसे रुके? वे तो रुकते भी नहीं थे एक जगह स्थान पे, तो उसको स्थान को इस बात को प्रस्तुत करने के लिए वो कह रहे हैं। मेरे विषय बोलिए।
सगोदोहनम मात्रम
गलत हो गया। सगोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग
तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम
कह रहे हैं। स मतलब सुखदेव गोस्वामी, वे तो गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम, जितने समय में गाय का दोहन किया जाए, गाय का दूध निकाला जाए, एक गाय का, ये नहीं कि शायद ही गाय का, जितने समय एक गाय का दूध निकाला जाए उतने समय तक ही मतलब निश्चित रूप से, और अधिक ने समय तक नहीं, गृहेषु गृहमेधिनाम, गृहमेधि मतलब जो गृहस्थ है उसके घर में पहले गैया होती थी, और जितना एक गाय को में दूध निकालने में समय लगता उतने समय तक वहां पे वो अवेक्षते मतलब प्रतीक्षा करते थे भिक्षा के लिए। महाभागस तीर्थी कुरुवंश तदाश्रमम, ताकि महाभाग का अर्थ प्रभुपाद क्या लिए हैं? परम भाग्यशाली, किसको कह रहे हैं? मैं समझता हूं हाँ, और क्यों जाते थे? तो कह रहे हैं तीर्थी कुरुवंश तदाश्रमम, तदाश्रमम मतलब उसके गृहस्थ आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है, नहीं बोला है मैंने, है इस बहुवचन है, ओनली एक वचन। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। मुझे लग रहा है कि महाभाग शब्द जो है ये सूत गोस्वामी के लिए। हाँ पढ़ते हैं पढ़ते हैं, क्योंकि संबोधन जैसा लग रहा है। श्री बाल प्रबोधनी, श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में तो बहुत काल तक एक ही स्थान में रहने की अपेक्षा है। अपेक्षा का अर्थ समझ रहे हैं, ये अपेक्षा ये एक्सपेक्टेशन है कि एक जगह बैठ के प्रवचन किया जाए। परंतु सुखदेव गोस्वामी का एक ही स्थान में रहना तो दुर्लभ था, तो किस प्रकार यह घटित हुआ इस आशय से श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक है पिछले श्लोक से। मान लो सुखदेव गोस्वामी लक्षित कर भी लिए गए होते तो भी वे रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वे कहीं रुकते ही नहीं थे। ये चीज, वे पूर्ण रूपेण विरक्त थे और उनकी बुद्धि घर में ही लगी हुई और जिनकी बुद्धि घर में ही लगी हुई है ऐसे ग्रहमेदियों के आश्रम को पवित्र करने के लिए जब तक गाय दुहने का समय होता था तब तक वे भिक्षा के लिए वहां रुकते थे, उससे अधिक नहीं। ही शब्द से ये तो स्पष्ट है, ही शब्द से यह सूचित होता है कि जन्म से ही वह ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि से परिपूर्ण थे। ये अर्थ ही मतलब समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि वह ऐसा नहीं करते थे। ही को अवधारणा मतलब निश्चितता के लिए बोल रहे, निश्चित ही केवल गो दोहन मात्र के लिए ही रुकते थे, तो वो शुरुआत से ही उनमें ज्ञान वैराग्य भक्ति पहले से था। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे। प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि गाय दूहने में कितना समय लगता है। वैसे आधा घंटा तो नहीं लगता है, गाय दूहने में कितना समय लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। हाँ उस समय, हाँ ये एक टीका दी जा रही है कि उस समय गाय जो है अधिक दूध देती थी तो आधा घंटा लग सकता है, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं। 20 लीटर देती होगी या जो भी रही होगी। और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। हाँ तो महाभाग का अर्थ जो है वह उस गृहस्थ के लिए ही है जो इस प्रकार के भक्त का उस भिक्षा दे सके। इसी चीज को भगवान एक जगह और भागवत में कहे, ततो देयम ततो ग्राह्यम, ऐसे ही महान भक्त को कुछ देना चाहिए, अगर देने का मौका मिले तो उस व्यक्ति का आश्रम पवित्र हो जाता है। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी ने जो लाइफ मेंबरशिप की स्थापना करी उसका उद्देश्य क्या था बताया? उसका उद्देश्य था कि बहुत सारा पैसा इस्कॉन में आ जाए। नहीं, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य यही था कि भक्त लोग किसी तरह धन दें, उनको लगेगा हम तो संस्था के मेंबर हैं, फिर भक्तों को बुलाएं अपने घर पे, घर में कार्यक्रम हो, कृष्ण भावना का प्रचार हो, भक्त बने, भागवत उनको दी जाए, इस प्रकार से कल्टीवेशन करने का मौका भक्तों को मिले। लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत आकर्षक होती हैं, इस कारण से हम इस बात को भूल जाते हैं कभी कभी कि कृष्ण भावना को देना ये हमारा मुख्य कर्तव्य। स्वाभाविक है उसके बाद वह कुछ डोनेशन देना चाहेंगे, लेकिन मुख्य बात है कि कृष्ण भावना देने की भावना होने से। आपको याद हो हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा था, विप्र शब्द आया था उनके लिए, विप्रषि में विप्र, और विप्र का अर्थ था कि दूसरों को परोपकार करने की भावना, याद आ रहा है? ठीक है, वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। बहुत अच्छा बात आ कि हम अगर जीवन रहा तो हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनते हैं, कितने निरपेक्ष थे। कह रहे हैं कि कपड़े तो जो वृक्षों की छाल है तो कपड़े की क्या जरूरत है, जल है और फल है तो क्या, लोगों को अगर सामान्य शब्दों में कहें किसी धनी व्यक्ति को मक्खन लगाने की क्या आवश्यकता है एक साधु को। आप समझ रहे हैं मेरी बात, साधु की करुणा वह दिख रहा है कि जो गरीब व्यक्ति है और जो अमीर व्यक्ति है वे दोनों ही दुख भोग रहे हैं, तो दोनों को कृष्ण भावना देना चाहिए। समझ रहे हैं, ये सच्चे साधु का लक्षण। इस संबंध में एक और बात मेरे को सुनने में आ रहा था, चौपाटी में बहुत धनाढ्य डिवोटी थे श्रीनाथ जी प्रभु, तो वो बहुत अच्छे डिवोटी थे, अब तो शरीर छूट गया उनका। तो बोलते थे कि मैं किसी स्थान में किसी संस्था में जाता था और लोग जानते थे कि वो बहुत पैसे वाले हैं, तो मैं देखता था कि जिस प्रकार से वह मुझको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे, हाँ रेस्पेक्ट या कुछ सम्मान दे रहे हैं, कि उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को भी सम्मान दे रहे हैं, और इसके द्वारा मैं उनकी, इंग्लिश में वो कहते हैं जेन्युइन, क्या बोलेंगे, उनकी असलियत सच्चाई को समझ पाता था उस संस्था में। हाँ बहुत बहुत मतलब बहुत लोग ऑब्जर्व करते इस बात को। ठीक है, वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या श्लोक श्रीमद् भागवतम का है इस प्रकार से? उसी को ट्रांसलेट किया गया चतुर्थता में, महंत स्वभाव ये तारित्य पामर क्या है अपना, मतलब जो महान भक्त हैं वह पर्यटन करते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें घूमना है या डोनेशन कलेक्शन करना है अभी, तो इसलिए ताकि लोगों को कृष्ण कथा के बारे में बता सके। देखिए, कम से कम लोगों को सुनने का मौका तो मिलना चाहिए, भक्तों का दर्शन हो तो होना चाहिए कि हाँ भाई ये है, कीर्तन होता है इस प्रकार से, इस प्रकार का भक्तिमय सुखमय जीवन है, इसका एक अनुभव तो होना चाहिए, संस्कार तो मन में पड़ना चाहिए। भक्ति स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात, समझ रहे मेरी बात? इसके लिए प्रीचिंग करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, वासुदेव जी भी कहते हैं नारद मुनि को, लेकिन श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, 11वें स्कंद में इस बात यही बात बोलते हैं, और नंद महाराज जी भी गर्गाचार्य को कहते हैं महत महत चलनम निर्णाम साधु नाम दीन वत्सलाम। यस यस यस, इसी प्रकार से इसमें अच्छा बोला गया है कि अरे भाई, ये आप कह रहे हो कि साधु लोग गृहस्थ के जाते हैं तो उनको तो पता है ना साधु लोगों का आश्रम कहाँ है, वह क्यों नहीं आ जाते? तो कहते हैं दीन, मतलब वो दीन है, घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं, उसी में आसक्ति में है, इस कारण से साधुओं से मिलने नहीं जाते, इसलिए साधु लोग जाते हैं। परंतु जो गौरकृष्ण महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था तो बोले कि साधु लोग अपनी साधना का ह्रास करके भी जाते हैं, भाई जितनी साधना बढ़िया से आश्रम में होती है उतना तो बाहर जाके नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ समय में किसी समय में अपनी साधना का ह्रास करके भी जाकर उद्धार करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हम वहां भी सुनते हैं विदुर जी मैत्री मुनि से सुन रहे हैं लेकिन फिर अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए जाते हैं और कृष्ण कथा बताते हैं। ठीक है, जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। ये समझ में आई बात? बहुत गंभीर है। किसी के यहाँ अगर हम लोग कार्यक्रम करने के लिए इसलिए जा रहे हैं कि वह डोनेशन देगा बहुत अच्छे से, मतलब भौतिक कारण से, तो फिर हम यही नहीं देखेंगे, यह भी देखेंगे कि अरे कितनी सुंदर पत्नी है, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितना सुंदर मकान है, एसी है, ये है, वो है, कितना सुखी है। बस उसके बाद जो है विनाश चालू हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रीचिंग ले मत जाइए, ये कभी भावना नहीं होनी चाहिए कि वह सुखी है। सुखी तो निश्चित रूप से साधु जीवन ही है, और ये हमें साक्षात भक्तों ने बोला, प्रभु जी आप तो बड़े सुखी हैं, मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, तुमने कहा अभी थोड़ा लेट हो गया है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि भक्त लोग किस प्रकार से कथा कीर्तन करके बड़े प्रसन्न है, एक अप्रिसिएशन उनका डेवलप होता है। इसीलिए जो 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 भक्त बड़े सुखी हैं साधन भक्ति करके वही प्रचार कर सकते हैं, हमको खुद को ही सुख नहीं प्राप्त है तो प्रचार हम वास्तव रूप से कर नहीं सकते, इसीलिए साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आपको अच्छा, जब आप खुद भक्ति में सुख प्राप्त होगा तो आपको देखकर लोग आकर्षित हो जाएंगे और व्यक्ति खुद संतुष्ट रहेगा कि ना ये भौतिक भोग प्राप्त करके मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। याद आ रहा है महाराज ने क्या बताया था दीक्षा के बारे में, तस्मात गुरुम प्रपद्यता वाले श्लोक पे, वृंदावन चंद महाराज पे क्लास दे रहे थे ना, तस्मात मतलब जब ये समझ में आ जाए कि जगत में किसी भी परिस्थिति में से सुखी नहीं हो सकता, स्वर्ग में भी जाके सुखी नहीं हो सकता, तस्मात तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। खैर, लेकिन इस पे महाराज परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज बोलते थे, अब ऐसी स्थिति तो है नहीं तो जो अपना संसार है उसको ही लेके गुरु जी की शरण में आइए, मतलब अगर यह रियलाइजेशन नहीं भी है तो भी गुरु की शरण में जाइए, भक्ति करिए तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और प्राय हम लोग सब दिशा लेते हैं तो कहाँ इतना रियलाइजेशन थोड़ा होता, समझना संसार लेके आने का मतलब अपनी भौतिक आसक्ति लेके गुरु की शरण में चले जाइए, उनकी कृपा से अब वह भी सब नष्ट होगा। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है उसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। किसी को श्लोक पता है? निष्किञ्चनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषोर् भवसागरस्य सन्दर्शनां विषयिणाम् अथ योषितं च हा हन्त हन्त विषभक्षणतोऽपि साधु। निष्किञ्चनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य, जो निष्किञ्चन है, जो भगवान के भजन की ओर उन्मुख होना चाहते हैं। निष्किञ्चनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषोर् भवसागरस्य, जो इस भव सागर को पार करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। संदर्श नाम विषय नाम अथ योषिताम च, विषयों का, विषयों का जो भोगों में लगे हैं, और स्त्रियों का भोग दृष्टि से देखना, यह कैसा है? हा हंत हंत विष भक्षण रूपे साधु, यह स्वयं जानते बूझते हुए विष भक्षण के समान, बहुत खतरनाक है, क्योंकि भोग वासना आ जाएगी। और ये कब, ये किसने बोला आपको पता है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वयं। और कब बोला है पता है? रथ यात्रा के कंटेक्स्ट में काफी रेलेवेंट है, जब उनको बोला गया कि महाराज प्रतापरुद्र आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें बोला। तो ऐसा स्थिति थी। एक छोटा सा बात, आज रथ यात्रा है तो कल ही मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, बड़ा अच्छा था कि रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे, नृत्य कर रहे, नृत्य करते 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 एकदम थक जाते हैं और बिल्कुल गिर जाते हैं। तो ना उस समय नित्यानंद प्रभु संभालने के लिए है, ना काशीश्वर पंडित, कोई नहीं था। तो स्वयं प्रताप रुद्र जाकर के उनको पकड़ते हैं, और जैसे ही उनको स्पर्श करते हैं तो महाप्रभु तुरंत बाह्य चेतना में आते हैं, छी 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 ऐसे करके बोलते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं, विषय ने मेरा स्पर्श कर लिया। तो प्रताप रुद्र महाराज बड़े डर जाते, क्या और एक वैसे अपराध हो गया। तो सार भाव भट्टाचार्य जी कहते हैं, आप घबराइए मत, ये महाप्रभु केवल बाह्य आचरण कर रहे हैं अपने भक्तों को सिखाने के लिए, ऐसा वो नहीं है। अगर वो जानते हैं, वो जानबूझ करके आपको उन्होंने स्पर्श करने का मौका दिया। एक छोटी सा पॉइंट था यात्रा के संबंध में। ठीक है, कोई प्रश्न है? नहीं तो आपने आज समझ लिया, सुखदेव गोस्वामी जी को लक्षित करना कठिन था और वह एक जगह टिक नहीं रहे थे, और इस कारण से भागवतम को उनको बोलना संभव नहीं होता इतने लंबे समय तक, कैसे रुकते। अब अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज का इस प्रकार से उपवास के लिए बैठना भी संभव नहीं था, क्यों बैठे वो? कुछ प्रश्न है? इस लोग
हम लोग का भक्ति शास्त्री क्लास चल रहा था, तो फर्स्ट डे में वैष्णव महाराज बता रहे थे कि आप लोग भी सन्यासी हो, ऐसा नहीं कि मतलब कि बुद्धि जो आश्रम ब्रह्मचारी में है।
ये कहते हैं प्रश्न सोचेगा, अच्छा ये श्लोक तो केवल सन्यासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं? नहीं, ऐसा
हमारे लिए भी वो अप्लाई,
जो कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है, जो कोई भी भगवान के धाम जाना चाहता है। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाउस प्रॉम करने नहीं जा सकते, लेकिन उद्देश्य क्लियर है, और शादी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ना, जब करदम, क्या नाम थे, करदम और दिवाहुति की शादी हो रही थी ना, सॉरी करदम जी की बेटियों की शादी हो रही थी, 9 बेटियां थी ना, और ब्रह्मा जी अपने बहुत सारे पुत्रों को लेके आए थे, और चतुर कुमार नारद जी को कहा भाई आप जाओ यहां से। तो महाराज बोले क्यों? बोले दो चीजें हो सकती है, एक कि जो दुल्हा है अगर वो ब्रह्मचारियों को देखे तो उसका मन बदल सकता है बड़ा अच्छा से तारे, और ब्रह्मचारी जो है वो दूल्हे को देखेगा तो उसका मन बदल सकता है, तो इसलिए दोनों को उस स्थान पे नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा आप पढ़ेंगे सुनेंगे कपिल देवावती संवाद, महाराज बोले आपको इन्वाइट करे तो नहीं जाना चाहिए। और परम पूज्य राधारमण महाराज बोले मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी क्या मतलब है? तो कह रहे हैं आपको शादी में इनविटेशन दिया जा रहा है तो नहीं जाना चाहिए। वैसे उनका उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि कहीं दिल्ली में शादी में स्टेटमेंट शादी में बुला रहे हैं, हाँ माता जी लोग नृत्य करेंगे कुछ करेंगे, तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए कि मैं इतना विरक्त हूँ कि प्रभावित नहीं हूँ। ठीक है, ये सब बातें हैं तो समझने वाली, बट मेन पॉइंट हमारा ये सुखदेव गोस्वामी जी कैसे बोले, ये प्रश्न कर रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आगे आएगा। और अब परीक्षित महाराज के बारे में हम कल सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।